नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% सार्वभौमिक शुल्क को अवैध घोषित किया। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोना ज्वालामुखी के फटने से 3 लोगों की मौत। तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में विश्व कप के दूसरे चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। समूह ने पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले आतंकी घटना की भी निंदा की। भारत और सिंगापुर ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के साथ संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अस्थिर दुनिया में इन संबंधों का उपयोग करके दोनों देशों के लिए शक्ति और स्थिरता का स्तंभ बनना चाहिए। त्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। ये व्हाइट हाउस की व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट।
रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने 2-1 के विभाजित फैसले में कहा कि प्रशासन 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत शुल्क को उचित ठहराने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि सरकार कानून के तहत आवश्यक गंभीर भुगतान संतुलन संकट को साबित नहीं कर पाई। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए आयात शुल्कों के व्यापक सेट को अमान्य घोषित कर दिया गया। धारा 122 के अंतर्गत अमरीकी राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में कांग्रेस की मंजूरी के बिना 15% तक शुल्क लगा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हो। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में रात भर चले सैन्य तनाव के बाद नाजुक संघर्ष विराम पर दबाव पड़ गया है। अमेरिका की सेना ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से उसके नौसैनिक बलों पर हमले हुए। अमरीकी नौसेना ने इसका जवाब दिया। 3 अमरीकी नौसेना विध्वंसक पोत हमले के बीच सफलतापूर्वक जलडमरू मध्य से गुजर गए। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमरीकी सेना ने हमलावरों को भारी क्षति पहुंचाई। वॉशिंगटन का कहना है कि प्रस्तावित शांति ढांचे पर तेहरान की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए संघर्ष विराम तकनीकी रूप से अभी भी लागू है। ईरान की सेना ने कहा कि अमरीकी बलों ने तटीय जल क्षेत्र में एक ईरानी तेल टैंकर और संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा बंदरगाह के पास एक दूसरे जहाज को निशाना बनाया। रणनीतिक केशम द्वीप और बंदर अब्बास के पास भी विस्फोटों की सूचना मिली है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने शत्रुतापूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सरकार समाचार एजेंसी के अनुसार तेहरान के ऊपर ईरानी हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल ने विस्फोट के बाद लापता हुए 20 पर्वतरोहियों के समूह में शामिल सभी जीवित लोगों का पता लगा लिया है। पुलिस के अनुसार 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि पर्वतरोह पर प्रतिबंध के बावजूद ये समूह ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर रहा था। डुकोनो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो पर्वतरोहियों और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ब्रिटेन सरकार के अनुसार क्रूज जहाज एमवी होडियंस पर हुए हंता वायरस के प्रकोप से तीसरे ब्रिटिश नागरिक में भी संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं। मरीज अटलांटिक महासागर के सुदूर द्वीप त्रिस्टन दा कुन्हा में है। इस संक्रमण की पुष्टि 2 अन्य ब्रिटिश पुरुषों में भी हुई है। अब तक हंता वायरस के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें क्रूज पर सवार 3 यात्रियों में से एक की मौत भी शामिल है। बुल्गारिया की संसद ने रुमेन रादोव को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। ये फैसला देश में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए लिया गया। 62 वर्षीय श्री रादेव इससे पहले राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। श्री रादेव ने अपने दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने से कुछ महीने पहले इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ये बातचीत रूबियो की इटली और वेटिकन की 2 दिवसीय यात्रा के बाद हुई, जब अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने ईरान में अमेरिका इसराइल युद्ध को लेकर हफ्तों से जारी तनाव के बाद इटली और वेटिकन में 2 दिनों की चली सुलह वार्ता को समाप्त किया। श्रीलंका के पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर अजीत निवार्ड कैब्राल के खिलाफ कोलंबो उच्च न्यायालय में एक मामला फिर से दायर किया गया है। श्री कैब्राल पर आरोप है कि उन्होंने अदालत के उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें 3 महीने के भीतर 10 करोड़ रुपए जमा करने थे। CIABOC ने कहा है कि यह मामला श्रीलंका के भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा 67(5) के अंतर्गत विवादास्पद ग्रीन बॉन्ड निवेश के मामले में संबंध फिर से दायर किया गया है। बांग्लादेश में आज नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में साहित्य, संगीत और मानवतावादी में उनके अमिट योगदान को याद किया गया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। वहीं साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रेलिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग चियोंग की चुनौती होगी। वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% सार्वभौमिक शुल्क को अवैध घोषित किया। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोनो ज्वालामुखी के फटने से 3 लोगों की मौत हुई। तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आयोजित विश्व कप के दूसरे चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।